दूसरा गहराई, केवल ऊपर ऊपर से लहराते नहीं रहो, ज्ञान के सागर की गहराई में जाओ, गुणों के सागर की गहराई में जाओ और शक्तियों के सागर की गहराई में जाओ। जिस पथ पर कोई पैर निशानी छोड़ गया, उस पथ पर चलना मेरे मन को रुचा नहीं। कांटे रौंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। तुम हंसो मगर मेरा विश्वास न हारेगा। तो गहराई में जाना, जब तक गहराई में नहीं जाती आत्मा, तब तक समर्थ नहीं बन पाती। आज वरदान दिया है बाबा ने, सदा समर्थ भव। और समर्थ बनने की विधि क्या है? गहराई में जाना, जो कि आज के वरदान में है। दूसरी विधि है अभ्यास। कौन सा अभ्यास ध्रुव? अभ्यास की प्रयोगशाला बनाओ। बाबा ने क्या कहा? लेबोरेटरी ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास की प्रयोगशाला बनाओ, जीवन को ही प्रयोगशाला बना दो। उसमें कौन से प्रयोग करो? योग की हर विशेषता का अभ्यास, एक ज्ञान के मुख्य पॉइंट्स, तीसरा शक्तियों का अभ्यास। ये तीन अभ्यास करो और ऐसे अभ्यासी को क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा? लगन की ऐसे लगन की लगन में मगन रहने वालों को विघ्न सामने आ नहीं सकते उनके। मुरली में एक वरदान, एक काम दिया हुआ है, विघ्न विनाशक, स्व के प्रति और दूसरों के प्रति। और वैसा ही एक ड्रेस भी पहनने को कहा, जो कि चमकीला ड्रेस है, जो कि विघ्न प्रूफ ड्रेस है, वो फरिश्ता वाला ड्रेस है। तो कौन सा मास है ये? जनवरी मास है, अव्यक्त मास। अव्यक्त मास समर्थी दिवस है, द डे ऑफ पावर। इंग्लिश ट्रांसलेशन है मुरली का, डे ऑफ पावर। केवल एक समर्थी दिवस नहीं, हर दिन डे ऑफ पावर हो जाए। डे ऑफ रिमेम्बरेंस इक्वल टू डे ऑफ पावर। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप, तो डे ऑफ पावर, नहीं तो भक्ति जैसी नहीं हो जाए। भक्ति में भी श्रवण मास आता है, एक श्रावण मास, उसमें क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। और जैसे श्रावण मास खत्म, जैसे थे जस का तस। कबीर कहता है जस का तस, जैसे थे वैसे। ऐसे ना हो जाए कि बस अब जनवरी मास है, 18 तारीख हो गई, पूरा हो गया, खत्म। योग खत्म, प्रोग्राम उधर खत्म हुआ, भट्टी वहां खत्म हुई, यहाँ हमारी भी भट्टी खत्म हुई। हमारी भट्टी का आधार प्रोग्राम ना हो भट्टी का। तो डे ऑफ पावर, तो डे ऑफ रिमेम्बरेंस इक्वल टू डे ऑफ पावर। तो हर डे डे ऑफ रिमेम्बरेंस हो और हर डे डे ऑफ पावर हो, समर्थ स्वरूप। तो बाबा ने आज बहुत सारे वरदान दिए, बाबा ने आज बहुत सारे काम दिए इस वर्ष में करने के लिए। कौन से वर्ष में? 80। जबकि अशुद्ध वृत्तियों की का वायुमंडल बहुत ज्यादा है और अभी उससे 4 गुना ज्यादा है। कहा ना एक जगह, उस समय, अब वृत्ति, अशुद्ध वृत्ति जो है उसकी बदबू बहुत ज्यादा है और अभी तो कई गुना ज्यादा है। अभी तो वायुमंडल में ही वासनाएं हैं, वायुमंडल में ही काम है, वायुमंडल में ही विकार है। इसके लिए कवि कहता है, मुझसे केवल पतझड़ की बातें किया करो, ये कुंतलों की छाया ये मुझे नहीं लुभाएगी। मेरे मन को कोई बंधन स्वीकार नहीं है, कोई भी बंधन मेरे मन को स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं तो खोजी हूं, मुझे तो खोजना है। उस महंगे, सबसे महंगे मोती की काशी को जो मिला नहीं, उसे पा लेने की धुन मेरी, वो मेरी धुन है। घुंघरू घुंघराले बाल, तो आज बाबा ने कौन कौन से वरदान दिए? संजय भाई, समर्थ भव। समर्थ अर्थात शक्तिशाली, समर्थ अर्थात पावरफुल, समर्थ अर्थात बलवान, बलशाली,
बहादुर,
स्ट्रांग, बहादुर। बहादुर का ग्रुप अभी कहा, एडवांस पार्टी के ग्रुप को बहादुर ग्रुप कहा बाबा ने। तो मैं समर्थ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, शिव शक्ति हूँ। ये सारे समान है, ये सारे वरदान भी है। वरदान दिया है भगवान ने कि तुम समर्थ आत्माएं हो, तुम निर्बल नहीं परंतु समर्थ हो। तो इस वरदान को सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जाना है तो ही वो फलित होगा, अन्यथा केवल ऊपर ऊपर लहराने की बात है। जब तक इसकी गहराई में नहीं जाते हैं तब तक समर्थ नहीं बन सकते। तो समर्थ भव पहला वरदान। देवेंद्र भाई दूसरा वरदान, सहज योगी भव। सहज योगी, जो सहज योगी है वही निरंतर योग युक्त भी है फिर आगे का, और वही फिर जीवन मुक्त भी है, और ये सारा ही फरिश्ता स्थिति ही है।
दो तीन मुरली पहले बोला था तुम्हारा टाइटल है सहज योगी, सतज योगी।
सहज योगी वरदान था
वरदान
ट्यूजडे कुछ दिनों पहले वरदान था। सहज योगी कौन बन सकता है?
सब कुछ सेवा किया
जो सहज योगी वरदान आया था अभी 3-4 दिन पहले, जो संपन्न है, जो महादानी है, जो सब कुछ सेवा में लगाने वाला है, तन मन धन सब कुछ सेवा प्रति, संकल्प सब कुछ सेवा प्रति जो समर्पित करने वाला है वो है। तो सहज योग का संबंध सेवा से, आज भी कहा जैसे ब्रह्मा ने सब कुछ हड्डियां स्वाहा कर दी ग्रुप से मुलाकात, शायद टीचर बहनों का ग्रुप है, जो निमित्त आत्मा है उनका ग्रुप है, उनसे कहा ना जैसे उसने सब कुछ स्वाहा कर दिया, इसके लिए तुम्हारा भी सब कुछ सेवा प्रति, स्व के प्रति नहीं सेवा के प्रति, हर कर्मेंद्रियों से सेवा हो, नैनों से और मुख से सेवा हो, सेवा ही सेवा, हर कर्मेंद्रियों से सेवा, कान से भी सेवा, नाक से भी सेवा। नाक से क्या सेवा करोगे?
आनंद ही आनंद।
श्वासो श्वास याद, कान से क्या सेवा करोगे? बाबा ने कहा हर कर्मेंद्रिया से सेवा करने है, सर्व थ्रू एवरी फिजिकल सेंसेस। कौन सी? सुन गाने सुन, आत्मा की स्थिति शक्तिशाली बनेगी ना जब सुनोगे तो वो कानों के द्वारा सेवा, नाक के द्वारा सेवा, मुख के द्वारा तो है ही, बोला ही है, स्नेही और शक्तिशाली बोल वो मुख के द्वारा भी सेवा है, कदमों से सेवा, हर सेवा ही सेवा, सब कुछ सेवा, संकल्प वृत्ति दृष्टि कृति बोल सब कुछ सेवा। तो सहज योगी को बाबा ने किससे जोड़ा था? सेवा के साथ। तो दूसरा वरदान है सहज योगी भव, तीसरा वरदान है निरंतर योग युक्त भव, माया मुक्त भव और योग युक्त भव, उल्टा नहीं होना चाहिए, योग मुक्त भव नहीं, योग युक्त भव। तीसरा, चौथा वरदान जीवन मुक्त, सत्संगम की जीवन मुक्ति नहीं, अभी की जीवन मुक्ति, अभी मुक्ति का अनुभव, संगम की, हाँ सत्युग की जीवन मुक्ति नहीं, संगम की जीवन मुक्ति, यहां पर ही मुक्ति का अनुभव, यहां पर ये अनुभव कि मैं निर्बंधन हूं। निर्बंधन स्थिति जो आत्मा की शक्तिशाली स्थिति है, परंतु जो आत्मा है इसके उसके मोह में प्रेम में फंसी हुई है उसे कभी जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। वानप्रस्थियों को भी मोह की रग लगी रहती है, कल की मुरली थी ना परसों की, वानप्रस्थि जो है उनको तो छोड़ के जाना चाहिए परंतु मोह की रस घर 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 में फंसे रहते, 80-90 साल के हो जाते हैं फिर भी घर को नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो संस्कार बन गया है, तो वो मोह होता है। तो निर्बंधन स्थिति जो है मोह मुक्त स्थिति, तुमको मोह मुक्त मोहजीत राजधानी में चलना है, मंडे था ना, तुमको मोहजीत राजधानी में चलना है तो स्थिति भी वैसी चाहिए। पांचवा वरदान, न्यारा और प्यारा भव, न्यारा और प्यारा भव, ये पांच वरदान है आज की मुरली में। सबसे पहला समर्थ भव, तो केवल सुन लेने से कुछ नहीं होगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। पहला समर्थ भव, दूसरा सहज योगी, निरंतर योग युक्त, जीवन मुक्त, फरिश्ता, और पांचवा न्यारे और प्यारे, पांचवा या छठवा। तो बाबा ने आज क्या देखा इस सभा में? चार्ट देखा, चार्ट में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज देखी बाबा ने, बाप समान चार्ट है सबका, बाप समान अव्यक्त वतन वासी है, बाप समान अव्यक्त वतनवासी और लवलीन है। एक की लगन में मगन, एक बाप दूसरा ना कोई, सदा स्मृति स्वरूप स्नेही, सदा स्मृति स्वरूप स्नेह में, स्नेह में याद प्यार में कहा हुआ है, स्नेह में अविनाशी,
स्नेह और याद में,
याद में अविनाशी और स्नेह में अविनाशी और सेवा में तत्पर विजयी, ये सारा याद प्यार में भी कहा है। तो ये बाबा ने मुरली की शुरुआत की वरदानों से, और फिर बच्चों की क्या स्थिति है, सब में एक ही संकल्प है, कौन सा? बाप समान बनने का नहीं, बाप को प्रत्यक्ष करने का, सबको एक ही धुन है, सबका एक ही दृढ़ संकल्प है, सबको एक ही धुन लगी हुई है। तो बाबा ने तन से भले वहां है परंतु मन से इधर है, इसलिए बाप से मन मना भव है लास्ट में कहा। तो ऐसी सेवा की स्टेज पर उपस्थित जो भिन्न भिन्न बच्चे हैं, चाहे उधर या चाहे इधर, बाप दादा सबको देख लेते हैं। सारे विश्व का चक्कर कितना कितने टाइम में लगाते हैं? सेकंड में। जैसे जैसे क्या? रेडियो की टीवी, दोनों स्विच ऑन किया, टीवी देखा, स्विच ऑन किया, रेडियो सुना, जैसे उतना टाइम वहां लगता है उतना टाइम बाप को किस लिए लगता है?
चक्कर लगा,
सारे दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, विश्व की परिक्रमा लगाने के लिए, बच्चे आगे है बाप पीछे है। दादी से कहा ना, बाप भी साकार में बच्चों के साथ परिक्रमा लगाते, वैसे तो उसको परिक्रमा लगाने में, चक्कर लगाने में टाइम नहीं लगता है, जरूरत भी नहीं है लगाने की, फिर भी लगाता है दृष्टि से। तो एक सेकंड में सब कुछ कर सकता है, फिर भी बाप दादा मुरब्बी बच्चों के लिए क्या करता है? रिस्पेक्ट रहता है उसका। दादी से कहा ना, मस्त फकीर सदा चक्रवर्ती सम्राट भव मुरब्बी बच्चे। फिर बाबा ने क्या देखा? याद और सेवा का दृश्य देखा, याद और सेवा की बैलेंस का दृश्य देखा, उसमें दिल में क्या देखा, बुद्धि में क्या देखा, तीसरा संकल्पों में क्या देखा, और चौथा
बोल
में क्या देखा। तो बोल में क्या देखा अनिल भाई? बोल कैसे थे? स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। हृदय में क्या है? हृदय में क्या है? बाप दादा बसा हुआ है। चीर के दिखाए तो कौन दिखेगा? प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ में दिखा रहे हैं कि
हनुमान का।
क्यों चीर के दिखाया था हनुमान ने? नागेश भाई, हनुमान ने क्यों चीर के दिखाया अपना? क्या ऐसी परिस्थिति खान खड़ी हुई कि उसको अपना हृदय चीर के, सीना चीर के दिखाना पड़ा? सीता ने एक बार बड़ा प्रसन्न होकर सभी को सौगात दी, हीरे मोतियों के हार की सभी को, तो सभी वानरों ने ली, हनुमान ने भी ली। हनुमान ने वो हीरे जो मोती थे, हार जो था, उसे मोती निकाल निकाल रहा है और अपने दांतों में क्या कहते हैं उसको, नोच रहा है, खचोट रहा है और फेंक रहा है एक एक। हाँ, ऊका मार के भी देखता है कि सब लोग पूछते हैं, सीता को क्रोध आ जाता है, अरे हनुमान तुम क्या कर रहे हो, ये कोई आदर सम्मान दी हुई सौगात का? तो कहते मैं तो बस ये देख रहा था कि क्या इन मोतियों में श्री राम मेरे इष्ट विद्यमान है, तो मैंने देखा इनमें तो है ही नहीं। तो फिर दूसरे लोग आ गए उसके पास, दूसरे वानर, कि फिर राम कहाँ है?
ये लो
इनसाइड, अंदर है अंदर। सेवक कहा बाबा ने, सेवक बहुत ऊंचा शब्द है, सेवक एक भक्ति का शब्द है, हमारा है सेवाधारी, सेवा जिसने धारण की है, पर सेवक शब्द भक्ति का शब्द है, सेवा शब्द ही बहुत ऊंचा है वास्तव में। सर्विस, सर्वर, इंग्लिश मुरलियों में सर्वर लिख के आता है, कंप्यूटर में भी एक सर्वर होता है वो, पर सेवा का कोई दूसरा शब्द नहीं है, सेवा अर्थात सेवा, सेवा पर वो सर्वर अर्थात वो, फिर वो कई अर्थ आते हैं उसके। तो सेवा बहुत ऊंचा शब्द है, सेवा में एक सर्विस तो है तो रिस्पेक्ट भी है, बहुत कुछ समाया हुआ है। सेवा का कोई ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, जैसे तपस्या का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, संस्कार शब्द का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, धर्म शब्द का क्या ट्रांसलेशन है अंग्रेजी में? हो ही नहीं सकता कोई ट्रांसलेशन, इतने ऊंचे शब्द है ये कि रिलीजन बहुत छोटा पड़ जाता है उसके सामने। अच्छा गवर्नमेंट के हिसाब से एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना, अर्थात एक शीशी में सुगंध है उस सुगंध को दूसरे शीशी में डालना है। इत्र को एक शीशी में इत्र है, अभी उसको आधा तो उड़ जाता है। जैसे ही आप अनुवाद करने जाते हो, यू किल द लैंग्वेज, यू मर्डर द लैंग्वेज, लैंग्वेज का घात हो जाता है जैसे ही उसको ट्रांसलेट करते हो। बाबा के महावाक्यों को जो विदेशी लोग पढ़ते हैं उनको कितना उसमें मजा आता होगा पता नहीं, इसके लिए सीखना चाहिए, पर कई लोग नहीं सीखे अभी तक। आ सकती है तो माया आ सकती है, सो लॉन्ग एज माया इज देयर अटैचमेंट कैन कम, ऐसे वैसा होता है उसका, उसमें कोई रस ही नहीं है। रस बाबा के शब्दों में राइमिंग है, बाबा के जो शब्द है वो बड़े अलौकिक दिव्य शब्द है, जैसे विश्वरतन विश्व किशोर दादा और मम्मा के लिए आज का मूर्ति, मूर्ति शब्द का प्रयोग किया गया, कितना ऊंचा शब्द है। उधर क्या करेंगे स्टैच्यू या इस तरह के कोई तो शब्द कहेंगे जिसमें कोई आकर्षण ही नहीं है। ये शब्दों में ही जानकी बाबा ने कहा था यज्ञ की मूर्ति है, बड़े ऊंचे शब्द है, वो केवल हिंदी में ही संभव है और जैसी कोई भाषा नहीं है दूसरी, मधुर माधुर्य है इसमें एक। जैसे उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हो, अनुवाद करते हो, उसका वो सौंदर्य, उसका वो माधुर्य, उसकी वो मादकता हो जाती है, उसका जो नशा बाबा को पसंद आते वो दूसरी बात है। हाँ बाबा को कुछ कुछ शब्द पसंद आते हैं, परंतु इन जनरल अमूमन तो वही है कि कुछ कुछ शब्दों में रस होता है। तो कहते हम हृदय में क्या देखा, हृदय में देखा कि सबके हृदय में श्री राम। हनुमान के भक्त ऐसे कहते हैं कि तुमने अपने हृदय में फाड़ के दिखाया राम बसते हैं, हम अपने हृदय में फाड़ के दिखाएंगे कि हमारे हृदय में हनुमान बसते हैं। हनुमान के जो भक्त होते हैं ना वो बड़ी महिमा करते हैं हनुमान की। यहाँ मंदिर है ना हनुमान का, हनुमान जयंती भी मनाते हैं वहां पर नक्की के पास, बहुत बड़ा फंक्शन होता है उस दिन, तो उत्सव होता है। तो हृदय में चीर कर दिखाए तो बाप, बोल में स्नेही और शक्तिशाली बोल, तीसरा संकल्पों के जैसे तीर है बाबा का, संकल्पों के तीर क्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्पों के तीर वायुमंडल में बाप की प्रत्यक्षता कर रहे हैं। चौथा बुद्धि, बुद्धि में सबके क्या है, बाप बसा बुद्धि ने हृदय में बसा है बाबा, झंडा लहरा रहा है बुद्धि में, वैसा ही झंडा विश्व में लहराएगा। तो ये सब क्या देखा बाबा ने, दृश्य देखे, कौन से दृश्य, याद और सेवा के बैलेंस के दृश्य, ये चार दृश्य बाबा ने देखे, छह वरदान दिए, पांच दृश्य, चार दृश्य देखे। अब काम दिया है बाबा ने इस मुरली में, तीन काम नहीं दिए, दस काम दिए है टोटल, दस और वो तीन, तेरह, तेरह काम है टोटल। तेरहवें से चालू करें कि पहले से चालू करें कि बीच से चालू करें, कहीं से भी आप चालू करो फिर। सबसे पहला काम क्या करना है, अस्सी के वर्ष में हर जगह बाबा ने पूछा और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, अभी दो बताएं और क्या करेंगे, बार बार वाक्य आया है और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, संतुष्टता है और चाहिए, और करो और करो और करो, करते रहो। ऐसे आया है ना, और क्या करेंगे और क्या करेंगे। सबसे पहला यथा योग्य वर्षा देना है आत्माओं को, यह सबसे पहला काम करना है, यथा योग्य वर्षा। उसमें फिर आगे विस्तार किया उसी का लास्ट पैराग्राफ में, उसका सिलेक्शन करो, सिलेक्शन की मशीनरी को तीव्र करो, क्या करो उसमें, अलग अलग ग्रुप्स हो, कौन मुक्ति में जाएगा, कौन जीवन मुक्ति में जाएगा, कौन ज्ञान लेने वाला है, कौन ज्ञान नहीं लेने वाला है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, देना तो सबको है परंतु मेहनत किस पे करनी है, नब्ज देखकर, जजमेंट पावर। और एक जैसे उदाहरण दिया उधर का, अभी तुम्हारे पास नए और पुराने भिन्न भिन्न सर्विस के साधन है, तो तन मन धन और समय लगाकर ये सिलेक्शन करो, इसकी फाइल को फाइनल करो कि कौन मुक्ति में जाएगा कौन जीवन मुक्ति में जाएगा, और जैसे वो ऑफिसर एक तो साइन भी करते और फिर स्टैम्प भी लगाते, साइन लगाते हैं और फिर साइन करते और स्टैम्प भी लगाते, बिना स्टैम्प के कुछ काम नहीं होता है, दोनों चाहिए। तो यहां पर भी क्या करो, आत्मा के
आत्मा
साइन कर दो, मुक्ति, जीवन मुक्ति। हाँ,
और आपकी साइन
और हमारी साइन कहाँ पर? और एक साइन यहाँ पर। और फिर किस धर्म में कौन जाएगा? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ईसाई में ये जाएगा, क्रिश्चियन में ये जाएगा, सिख में ये जाएगा, देवी देवता धर्म। इधर आ जाओ, हमको इधर मेडिकल में सिखाया जाता है इमरजेंसी मैनेजमेंट। जैसे बहुत बड़ा भूकंप हुआ है और 1,000 पेशेंट है, पूरा ग्राउंड लोगों से भरा पड़ा है, अभी इनका मैनेजमेंट कैसे का है? उसको ट्रायज कहा जाता है, कि इसमें से सबसे पहले देखना है सबसे सीरियस कौन है। कोई है जो चलते फिरते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है कैटेगरीज डिवाइड करनी होती है, ए बी सी, कि जो सबसे ज्यादा सीरियस है वो सी बी और फिर ए। तो इसकी विधि क्या है, अभी छांटना कैसे है लोगों को, उसमें जाके चिल्लाना होता है, जो चल सकते हो मेरे पीछे आ जाओ। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक क्या हो गया, जो सीरियस है, जो सीरियस नहीं है वो निकल गए वहां से, जो चल सकते हो मेरे पीछे आ जाओ, एक आदमी उसको लेके उधर चला जाता है। अभी जो बाकी जो बचे हैं, फिर इसमें जो उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, फिर कोई कोई तो ऐसे बिल्कुल अभी मरने ही वाले हैं, बिल्कुल उसका कुछ नहीं कर सकते, पैर टूट गया, दोनों पैर टूट गया, हाथ भी टूटा है, उसको छोड़ दो, जो बिल्कुल मरने, उसमें वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो तो जाने ही वाला है बिल्कुल। पर जो बचाया जा सकता है जिनको, उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। तो मुक्ति वाले जो भी है वो मेरे पीछे आ जाओ, और जीवन मुक्ति वाले है जो इधर चले जाओ, ऐसे छाटना है आत्माओं को। यहाँ कितने आते हैं रोज ओम शांति भवन में, उसमें से छाटना पड़ेगा, मुक्ति जीवन मुक्ति, कौन सा धर्म में कौन जाएगी। तो बाबा ने कहा ये सिलेक्शन की मशीनरी तेज करो, कौन करेगा, देश करेगा विदेश करेगा, फाइनल कर दो इसको, ये काम करना है। तो ट्राइज, उसको हम लोग ट्राइज कहते हैं, ट्राइज सिस्टम, जो इमरजेंसी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है, ये सारा ट्राइज छाटना है लोगों को। पहला काम, यथा योग्य वर्षा, और उसी अनुसार उन्हें संदेश दो, ये भी वाक्य आया है उसमें, उस अनुसार उन सब आत्माओं को संदेश दो। मुक्ति में जाने वाला है तो वैसे, जीवन मुक्ति में जाने वाला है, जीवन मुक्ति में भी कौन सी कैटेगरी की आत्मा है, उसमें भी कोई महान आत्माएं हो सकती है, वो भी तो निखिलेश भाई कोई चित्र भी बना सकते हो इसमें, एक आदमी खड़ा है और छाट रहा है मुक्ति जीवन मुक्ति, कौन सा धर्म है, फटाफट कार्टून रेडी कर दो। दूसरा, तड़पती हुई आत्मा, अगर देखा जाए तो सब एक ही काम है, काम एक ही है, जो वरदान भी एक ही है, आखिर सारा मुरली एक ही जगह आती है, अपने को आत्मसमझ। कोई भी मुरली ले लो, आखिर में एक ही जगह पहुंचना एक ही जगह है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, स्वयं को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कितना अद्भुत महावाक्य है, नया नहीं लगता है? तो संजय भाई कितना नयापन है इस वाक्य में, कितना बिल्कुल पता नहीं कितना समाया हुआ है, सारी मुरलियां उसमें समाई हुई है, अव्यक्त साकार सब कुछ एक ही महावाक्य में। कितनी गहराई है, देह सहित, सुन रहे हो नागेश भाई, कितनी नई नई वाक्य रचना देखो कितनी अच्छी है, देह सहित, देह के सर्व संबंधों को भूल, कभी सोचा था नहीं ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। उसमें है कि सर्व धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, मन मना भाव मध्याजी वक्ता माम नमस्कुरु, मेरे मुझे प्रणाम कर केवल, बस वो गीता के महावाक्य वो दूसरा। यहाँ तो बाबा कह रहे देह के धर्म सबको भूल कर स्वयं को आत्मा समझ, कितनी नई बात है। एक मुरली पूरी इसके ऊपर थी, पंडर होना चाहिए तुमको, आश्चर्य लगना चाहिए, इतनी छोटी आत्मा मंडे की मुरली और इतना बड़े शरीर को चलाती है, शरीर चला जाता है आत्मा नहीं जाती, इसमें भी आत्मा शिव बाबा कब आता जाता है इसको भी पता नहीं चलता है। वो जो है मंत्र देते हैं वो आत्मा द्वारा दे रहे हैं, आत्मा बोल रही है उनको पता नहीं, पर एक मुरली पूरी इसके ऊपर थी अभी अभी साकार, कितनी छोटी आत्मा, वंडरफुल पार्ट है आत्मा का भी, और वो इतना उतना उसमें रिकॉर्ड भरा हुआ है,
वो भी सीरियल वाली है, कोई ऊपर
हाँ,
नीचे नहीं,
ऊपर नीचे नहीं होता है, इधर का उधर नहीं होता है, घिसते नहीं।
स्टार्टिंग में क्या बनता,
वही तो प्रश्न है।
बड़ी
बाबा ने एक ही मुरली में एक हफ्ते में ऐसे 3 महावाक्य उच्चारण किए, एक के बाद एक लगातार 3। जैसे उदाहरण के तौर पे हम किसी गुरु को मानते हैं, भक्त है, बहुत विश्वास है किसी गुरु के ऊपर, और जब भी संकट आता है उसके पास जाता है। एक दिन वो गुरु कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं ही बंधन में हूँ, तो कितनी दुखदायी अवस्था हो जाएगी उस भक्त की। बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, ट्यूजडे की मुरली साकार। इस ड्रामा में मेरा भी पार्ट है। पहला महावाक्य यहां तक ठीक है, जैसे तुम्हारा पार्ट है मेरा भी पार्ट है, इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है। दूसरा महावाक्य, पार्ट बिगड़ मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि वो जैसे कि वो अपने बंधन को बता रहा है, हाँ प्रत्यक्ष कर रहा है। पहला
अच्छा
था वहां तक ठीक है, दूसरे तक भी गनीमत, परंतु तीसरा है मैं ड्रामा के बंधन में हूं। तो फिर हमारा क्या होगा? वही हो गया ना, गुरु, कोई शिष्य गुरु के पास जा रहा है और वो गुरु कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बाबा ने कहा कि मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। ये 3, एक ही एक के पीछे एक महावाक्य है मंडे की, ट्यूसडे की मुरली में, पहला दूसरा तीसरा, एक के पीछे एक। तो सब अद्भुत है, रहस्य युक्त है। ये कहां थे हम? तड़पती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त करना, यथा योग्य तृप्त करना है, जिसमें उसकी तृप्ति है उसे वो देना। जो हमारे पास जिस लक्ष्य से आया है, कोई ब्रह्मचर्य के बारे में ढूंढने आया है तो उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो, कोई विज्ञान के बारे में जिज्ञासु है तो उसे ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दो, आएगा नहीं फिर बाद में। नफ्स देखो उसको क्या चाहिए, कोई भगवान की तलाश में आया है तो सीधा परमात्मा का परिचय दे दो। कोई आया है स्टूडेंट है और उसको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, स्कूल में अच्छे मार्क्स पाने हैं, उसको अगर ब्रह्मचर्य सिखाओ तो दूसरे दिन से गायब हो जाएगा। जिसको जो चाहिए, और ये भी है कि सबकी योग्यता नहीं है इतना ऊंचा इस ज्ञान को समझने की, कैसे समझ पाएगी, उनमें वो योग्यता ही नहीं है, उनमें वो पावर ही नहीं है। ये ज्ञान के लिए बुद्धि बड़ी स्वच्छ चाहिए, वो तो अपने अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए आ रही है, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दो तो मैं ऐसे कर दूंगा। वो पिछली बार कहा था ना, समर्पित तक, मतलब जैसे जहर तक। एक दूसरा काम तो तृप्त करना, आत्माओं को भरपूर करना, संतुष्ट करना। कर कौन सकता है जो स्वयं भरपूर है, कर कौन सकता है जो स्वयं माला माल है, जिसमें रहम दिल है और वही दानी है। फिर दूसरा काम, तीसरा काम, इस सीजन का तीसरा काम, 80K वर्ष का, याद और सेवा का बैलेंस। ब ब ब 3 ब है, 3 बी है, पहला बैलेंस, दूसरा ब्लिसफुल, तीसरा ब्लेसिंग। तो बैलेंस रखना यहां पर इस योगी जीवन में, बैलेंस ही सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा कुछ कर देना एकदम, मनुष्य का मन अति में डोलता है, अति मोह तो अति वैराग, अति आकर्षण होता है किसी व्यक्ति से, फिर उसी व्यक्ति से इतना विकर्षण हो जाता है कि बात मत पूछो, देखना भी नहीं चाहता फिर उसका मन। पर ये दोनों एक ही तो, इधर और इधर, इधर दो डोलते रहता है। भोजन कहेगा इतना इतना भोजन में रस, इतना रस, बाबा ने तो कहा शौक नहीं होना चाहिए, हंगामे में नहीं जाओ, परंतु ये सुनकर उस दिन के लिए फिर पूरा भोजन ही छोड़ दिया फिर। और फिर जब चालू किया तो ऐसा चालू किया तो आज तक कभी खाया नहीं होगा। आकंठ, दोनों तरफ, नींद को छोड़ दिया, ना अति ऊंचम ना अति नीचम, जब तक बैलेंस स्ट्राइक नहीं होता है, और इसको बहुत 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 लंबा समय लगता है बैलेंस के लिए, कि वो भी ज्यादा नहीं ये भी ज्यादा नहीं, नहीं तो जहां पे इधर से उधर हो जाता है। फिर उसके बाद ये था बैलेंस, उसके बाद ब्लिसफुल स्थिति में रहना, अर्थात आनंद स्वरूप आत्मा हूं, वो आनंद की अनुभूति, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, ये आनंद की अनुभूति है। इसी आनंद की अनुभूति में लंबा समय टिकना, उसके लिए भी अभ्यास चाहिए बहुत। उसके बाद ब्लेसिंग देना, ब्लेसिंग देना अर्थात दुआएं, ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। तो बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लिसफुल, ये 3 बातें बोली। चौथा स्लोगन याद रखना इस वर्ष के लिए, इसी में दो एक ही साथ जोड़ दिए बाबा ने, ड्रेस और स्लोगन। स्लोगन है स्वयं के प्रति विघ्न विनाशक, और दूसरों के प्रति भी, सर्व के प्रति विघ्न विनाशक। उसकी विधि क्या है? क्वेश्चन मार्क को क्या कर दो, फुल स्टॉप। एक वरदान भी था, अगर परिस्थिति आती है पेपर आते तो घबरा जाते हो, उसमें क्या करो क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप, क्वेश्चन फुल स्टॉप है बिंदी की स्थिति, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं देख सुनो, बाबा ने जो दिया उसी को देखो, बाबा ने जो सुनाया उसी को सुनो, वरदान था ना एक चल परसों दो तीन दिन पहले। तो क्वेश्चन मार्क जो है उसको किस में परिवर्तन कर दो, बिंदी में, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, जो हो गया सो हो गया, अभी आगे वो सब नहीं। और दूसरी विधि क्या है आज की मुरली से विघ्न विनाशक बनने की, बोल दिया है हमने आज की मुरली से, हमने बोल दिया, शुरुआत ही वहां से की थी, वरदान में है। अभ्यास, अभ्यास की प्रयोगशाला करो तो विघ्न नहीं आएंगे, सामना ही नहीं करेंगे तुम्हारा, वो भी है विघ्न विनाशक बनने की विधि। तो योग की विशेषताओं का अभ्यास, ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स का अभ्यास और शक्ति का अभ्यास,
योग की
विशेषता। एडवांस पार्टी का आते हैं ना कि बीच में बताएं, पहले एडवांस पार्टी का थोड़ा लास्ट में करेंगे, वो थोड़ा लंबा चलेगा,
9:30 बजे उठ जाता है
तो इनको हम सुना देंगे ना बाद में, अलग से सुना देंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर उसके बाद कहाँ थे, विघ्न विनाशक, तो स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति, उसी में बाबा ने जोड़ा कि ऐसा एक ड्रेस भी तुम्हारे पास होना चाहिए जो कि चमकीला हो, जो कि मिट्टी वाला ना हो। हाँ, एक तो उसको, फिर दूसरा फुल स्टॉप से सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना है, स्टॉप और स्टॉक। बाबा जब चाहे तब इंग्लिश के भी प्रयोग कर लेता है अपने सुविधा अनुसार, हिंदी का तो वो करता ही है, पर वो अपनी सुविधा अनुसार दो इंग्लिश शब्द ले लेगा तो कभी इंग्लिश का एक और हिंदी का एक ले लेगा। लवलीन नया शब्द बनाया है, हिंदी साहित्य में कहीं नहीं है ऐसे शब्द, लवलीन, लव को इधर से लिया, लीन को इधर से लिया, दोनों को जोड़ दिया, एक नया शब्द बनाया
है। इंग्लिश हिंदी में जानते हैं,
वो नहीं जमता है। नहीं, उसमें भी कुछ कुछ हिंदी के शब्द गए हैं, जैसे जगन्नाथ शब्द जो है वो अभी इंग्लिश में चला गया है, उसको इंग्लिश में जगरनॉट कहते हैं, जगरनॉट अर्थात कोई एरिया का कोई दादा वगैरह होगा ना कोई लॉर्ड, तो वो जैसे हिंदी में जगन्नाथ जगत का नाथ है, वैसा किस्मत शब्द हिंदी इंग्लिश में है अभी, किस्मत शब्द इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, किस्मत फॉर्चून फेट, तो वो उधर चला गया है, ऐसे बहुत सारे। दूसरा ये जैसे हटके, हटके शब्द है वो भी, जरा हटके, हटके शब्द भी इंग्लिश में चला गया है, लिटिल हटके, हटके मतलब थोड़ा दूसरों से अलग,
मॉडर्न बना दिया गया
इंग्लिश। तीसरा, फिर उसके बाद ड्रेस का हो गया, तो मिट्टी की ड्रेस नहीं, विघ्न विनाशक का हो गया, स्टॉक का हो गया, ये था अपना कौन सा। फिर उसके बाद में गुणों, गुणों के गहने, शक्तियों का के शस्त्र, अष्ट शक्तिधारी संपन्न मूर्ति, और लास्ट में श्रेष्ठ जीवन का पाव कहाँ पर हो, कमल आसन पर पाव हो, और लास्ट दसवां जो है वो है योग का प्रयोग, वो कौन सा,
कंबाइंड
स्वरूप। तो ये टोटल 10 होमवर्क है, लास्ट का पहले पूरा कर लेते हैं, कौन कौन कंबाइंड, मैं आत्मा, कौन सी आत्मा, वरदानी स्वरूप, वरदानी शक्ति बोला एक जगह, और वो है विश्व कल्याणकारी, ये दो कंबाइंड। और क्या करो, वाइब्रेशन फैलाओ, कैसे फैलाओ, मनसा और वृत्ति से, कौन से वाइब्रेशन फैलाओ, वाइब्रेशन की तुलना दो चीजों से की है, एक खुशबू से और दूसरा फाउंटेन से, खुशबू के जो वाइब्रेशन है वो कौन से, प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता, वो सारे वाइब्रेशन फैलाओ, कैसे, अमृत वेले फैलाओ, दोनों कंबाइंड है। और फिर उदाहरण दिया वहां पर, और एक उदाहरण, उदाहरण पे उदाहरण, जो महान कवि होते हैं वो इस तरह से उदाहरण देते, एक उदाहरण पूरा नहीं, उसके अंदर दूसरा उदाहरण, जैसे वो खुशबू के जो साधन है, चंदन की खुशबू, गुलाब की खुशबू, वैसे तुम भी खुशबू फैलाओ, सुख शांति आनंद क्यों फैलाओ, क्योंकि दुनिया में वातावरण बदबूदार है, बदबू है, अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है। इसके लिए तुम वायुमंडल को परिवर्तन करो। एक दूसरा, अमृत वेले क्या करो, फाउंटेन, फाउंटेन के मौफिक, फाउंटेन के मानिंद क्या करो,
गुलाबाशी।
गुलाबाशी, रोज वाटर। तो ये 10 काम है, 10 काम में हम योग के प्रयोग जोड़ सकते हैं। सबसे पहला काम था कि आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देना, यथा योग्य वर्षा। तो ये भी हम अमृत वेले आत्माओं को इमर्ज करके ये मुक्ति में जा रहे हैं, इनको जीवन मुक्ति में भेज रहे हैं। ये एक इस तरह से एक विजन बना सकते हैं और वो करते हैं। हाँ क्या होगा, तीर्थ। हाँ जो भी है। एक तो ये, दूसरा यथा योग्य तड़पती हुई आत्मा हमारे सामने है, हमारी दृष्टि दे रहे हैं हम उसे और वो शांत हो रही है, तृप्त हो रही है, भरपूर हो रही है, संपन्न हो रही है, उसकी प्यास बुझ रही है, श्रुधा शांत हो रही है। ये एक दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग
तड़पने वाले भी बहुत होते हैं ना सर।
हमारे जीवन का प्रयोग है वो, हमारे जीवन में ये दो चीज का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस, फिर हम ब्लिसफुल स्थिति में रहे, हमारी ब्लिसफुल स्थिति हो। तो उसका भी एक प्रयोग कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, सच्चिद आनंद स्वरूप। ये सबसे हमारे जो 7 स्वरूप है उसमें से ये जो स्वरूप है ना, ये भक्ति में भी ये एक ही स्वरूप है जिसमें हम सीधा, जैसे परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, मैं भी सच्चिद आनंद स्वरूप है। बाकी इसमें हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्तियों का, वो थोड़ा अलग है। परंतु ये एक ऐसा स्वरूप है कि इसमें सब्सटेंस एक ही है दोनों में, क्वांटिटी का भी ज्यादा फर्क नहीं इसमें पता चलता है। भक्ति में भी ये कहा जाता है, सन्यासी भी इस तरह का अभ्यास करते हैं कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। फिर वो आगे अपना दूसरा जोड़ते हैं उनके योग में, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ, ये जो कुछ है सर्व खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। वो आगे आगे का सोचना जोड़ते हैं उसमें, भ्रमाया। तो वो अपना दूसरा इस तरह से, मुझे याद है जब मतलब ये जो स्थिति है योग की, ब्रह्म की, मैं जब पहली बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गया था, वो ये इस स्थिति में इतना ज्यादा स्थित था कि मैं आत्मा, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये सब कुछ ब्रह्म है। तो मैंने वहां देखा एक बहन एक भाई को कोर्स करा रही थी, मैंने क्या संकल्प सोचा, ये बहन भी ब्रह्म है, ये भाई भी ब्रह्म है, वो किताब भी ब्रह्म है, और जो टेबल है वो भी ब्रह्म है, और जो सेंटर है ये सब भी ब्रह्म है। इस स्थिति में मैं एक ही बार गया था वहां पे बस। फिर वो बहन को 2-3 जो प्रश्न पूछे तो वो तो फिर उसने कुछ नहीं कहा, वो उत्तर ही नहीं दे पाई, तो फिर छोड़ दिया मैंने, कहा छोड़ो ये भी एक मार्ग है, जाने दो इस मार्ग को। उसको ऐसे प्रश्न पूछे 2-3, उसने कहा, वो समझा रही थी परमात्मा एक है, गॉड इज लाइट, तो ऐसा वो कह रही कि बाइबल में भी लिखा है। तो मैंने कहा बाइबल में कहाँ लिखा है, न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, मैथ्यू में लिखा है, ल्यूक में लिखा है, मार्क में लिखा है, कि जॉन में लिखा है, कि रिविलेशन में लिखा है, कि बुक ऑफ एग्जोडस में लिखा है। तो बोली कल बताऊंगी। मैंने कहा छोड़ो भाई, इनको क्यों परेशान करना, ये भी एक मार्ग है, जैसे भगवान को पाने के एवरी वो सब मार्ग उसी के पास जाते हैं, वैसे ब्रह्मा कुमारी भी एक मार्ग है। अभी ठीक है, इनका भी मार्ग है, चलने तो, अच्छे तो है, पवित्रता तो धारण की हुई है, इनका भी कल्याण हो ही जाएगा, एक दिन तो भक्त तो ये बन ही जाएंगे। तो मैंने ऐसे सोचा कि गाय, हाँ मैं उनके प्रति कल्याण की भावना थी कि ठीक है भाई हो जाएगा कल्याण, कोई बात नहीं, चलने दो कोर्स। वो बोला आप आ जाना कल से, मैंने कहा आता हूँ, और फिर गए ही नहीं कभी। कहाँ थे हम,
कहाँ हुआ है
अभी तो चालू है,
चालू है अभी। यही है,
दिल फाड़ के दिखाया ना
आगे। दिल किस, वो तो सिर पे है। अच्छा यहाँ फाड़ के दिखाया, ओ
हम लोग यहाँ फाड़ेंगे,
यहाँ फाड़ा, आत्मा के दो विभाजित कर दिया। अच्छा दिल इधर दिखाया,
नहीं नहीं इधर दिखा, हमारा तो इधर ही है, नहीं नहीं यहाँ दिल थोड़ी है अपना, हमने इधर ही
डॉक्टर है।
ये दो, ये आत्मा परमा, ये मुक्ति जीवन मुक्ति का विभाजन हो रहा है यहाँ पे, एक ग्रुप मुक्ति एक ग्रुप जीवन मुक्ति। एक वो प्रयोग, फिर मैं आनंद स्वरूप आत्मा पे थे हम, कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, इसमें लंबा समय स्थित रहना परम धाम की स्थिति में। ये बहुत अच्छा योग का प्रयोग है। फिर उसके बाद में ब्लेसिंग्स देना, सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए। वो आपने चालीसा बनाया था ना, शुभ संकल्पों का चालीसा, सभी आत्माओं का, इसका भी कल्याण, उसका भी कल्याण, इसका भी कल्याण, उसका भी कल्याण, जितना है सबका कल्याण, सबके प्रति शुभ भावना। उसके बाद में फिर गुणों के गहने, शक्तियों के अस्त्र और कमल पुष्प पर हम विराजमान है। ये भी तीन ये प्रयोग है कि जो हम देख सकते हैं स्वयं को। और लास्ट में है बाप से कंबाइंड, मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हूँ और मुझसे खुशबू फैल रही है वाइब्रेशंस की, एक ये, और दूसरा एक फाउंटेन निकल रहा है और आत्माओं पर पड़ रहा है, ये भी एक प्रयोग है। तो ऐसे बाबा ने 10 काम दिए हैं 80 के वर्ष में करने के लिए। आगे बोलो, अब पार्टियों या ग्रुप से मुलाकात, सेवा में सफलता के लिए क्या क्या करेंगे? सेवा केंद्र की बहनें शायद है वहां पर बैठी हुई, क्या करो? 1, 2, 3, ये तीन चीजें करनी है। पहला, दूसरा और तीसरा, पहला अथक सेवाधारी, दूसरा सेंटर के वाइब्रेशंस में रूहानियत, और तीसरा सेंटर के वाइब्रेशन में एकता। तो रूहानियत, एकता और अथक सेवा, ये तीन है। पहले पे आते हैं, पहला है क्या? अथक सेवाधारी कौन बनेगा, कैसे बनेगा, किस विधि से बनेगा, क्या बोला है?
जो निमित्त हैं वो अथक बनेंगे।
किसको आगे बढ़ाएंगे? जो नई आत्माएं हैं उनको क्या करेंगे?
उनकी विशेषताओं को देखना,
उनके विशेषताओं को देखना, उनके विशेषताओं का मूल्य करना, मूल्य रखना और उनको उमंग उत्साह दिलाना। तो केवल ये वहां की बात नहीं है, अभी आप इसको सेंटर छोड़ दो और ये समझो कि ये मधुबन की बात है। जो भी नई आत्माएं आएंगी उनके लिए क्या, सबसे पहला तो विशेषताएं देखना, विशेषताओं का मूल्य रखना और स्वयं अथक सेवाधारी बनकर रहना और उसको उमंग उत्साह दिखाना। अभी ये सेंटरों की बात और ये है मधुबन की बात। तो मधुबन में भी वही सारे प्रिंसिपल लागू होते हैं जो सेंटर पे है। ये तो सेंटरों का सेंटर तीर्थ है, सबसे तीर्थ राज है ये। वैल्यू को काम में लगाएंगे तो कायम हो जाएंगे, वेरी गुड, कार्य में लगाने से। तो जो भी आत्माएं आती है, ऐसा नहीं कि उनको उमंग उत्साह बहुत था मधुबन में आने का, यहाँ आने के बाद उमंग कम हो गया, उत्साह कम हो गया। अगर वो कम होता है वो भी जैसे हमारी कमी, हमको देखकर अगर कोई पुरुषार्थहीन हो जाता है या जिसका पुरुषार्थ कम हो जाता है, ये भी सूक्ष्म विकर्म है। हमको देख रहा है वो कि हम ये कर रहे हैं, हमने कुछ बोला नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, पूछा नहीं, केवल देखा और हमसे कोई एक अवगुण धारण कर लिया, तो ये भी विकर्म है सूक्ष्म है कि नहीं? एक दूसरा, दूसरा क्या है? वातावरण के लिए कहा है, केंद्र का वातावरण कैसा हो? रूहानियत हो उसमें, रूहानी हो वो वातावरण। क्योंकि जो आत्माएं आ रही है उनको झंझट वाली है, जो आत्माएं घर गृहस्थी के झंझट में फंसी हुई, जो आत्माएं है वो बोझिल है, थकी हुई है, ऐसी आत्माएं, तो उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग दो, एक्स्ट्रा कोऑपरेशन देना है। कैसे? इस वातावरण से, यहाँ का वायुमंडल बहुत पावरफुल होना, यहाँ तो है ही, वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे जितने केंद्र है सबका वायुमंडल बहुत पावरफुल है संसार की तुलना में। बाबा ने कहा वो महसूस करे कि अंतर क्या है, ये महसूस करे उधर का क्या है इधर का क्या है, उनको वो सहज योगी बन जाए, वो सहज उनकी पुण्यति हो जाए और सहज स्वतः आकर्षित हो जाए। ये तीन बातें कहने कही है वहां पर बाबा ने। तो जो भी आत्माएं आ रही है वो सहज आकर्षित हो जाए, उनको महसूस था वो अंतर का, जो भी आत्माएं आ रही है उनको अनुभव हो कि यहाँ हमारी उन्नति हो सकती है, जो भी आत्माएं उनको लगे कि स्व उन्नति का ये सहज योगी बनने का एक स्थान है ये, और उससे स्वयं की भी उन्नति होगी, ये भी कहा है स्व उन्नति। ठीक है, स्व उन्नति के लिए क्या करना है? अपना संजय भाई स्लोगन था एक, एक दो तीन, तीन का त्याग और एक को ले लो,
क्वेश्चन करेक्शन
कनेक्शन कोटेशन और करेक्शन, इसको त्याग कर क्या करो?
बाप से कनेक्शन ठीक करो,
बाप से कनेक्शन ठीक करो। तो वो था यहाँ पे, फिर था स्व उन्नति की बात। तो यहाँ पर भी वातावरण पावरफुल हो जिसमें हमारी भी उन्नति हो, आने वाली आत्माओं की भी उन्नति हो, क्योंकि यहाँ जो भी आ रहे, चाहे पार्टी वाले आ रहे चाहे वो भट्टी वाले आ रहे हैं, वो वहां क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो 3 दिन में उनको बहुत कुछ देना है, हमको 3 दिन के लिए आ रहे हैं, परंतु वो किस वातावरण में जाके देखो तो वहां पर न ज्ञान न योग, केवल मुरली जाना, वो भी थोड़ा सा जाना, कभी जाना कभी नहीं जाना, कभी सुनना कभी नहीं सुनना, ज्ञान योग का चिंतन, ज्ञान का चिंतन तो नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है उधर, मुरली सुनना है, ज्ञान ज्ञान में चलने की क्या परिभाषा है? बाहर के सेंटरों पे ज्ञान में चलने की परिभाषा है मुरली में जाना और सेवा करना बस। अमृत वेला उसका कोई खास लेना देना नहीं है ज्ञान में चलने से, वो आपका है, करो तो करो, पर वो कोई देखता भी नहीं है क्योंकि सेंटरों पे तो जाना नहीं है अमृत वेला करने, वो तो घर है। मुरली में जो आता है और सेवा में जो थोड़ा सहयोगी है उसकी उसको परिभाषित किया जाता है ज्ञान में चल रहे हैं। हाँ, बाहर के नहीं खाते है बस। वो सब कुछ रहता ही नहीं है उसमें, वो कुछ कुछ तो ऐसे आ जाते जिनका कोर्स भी नहीं हुआ। उस दिन मुरली में भी था, ब्राह्मणी किसी किसी को लेके आती है तो दो चीजें बोली थी उसको, दंड उसको ब्राह्मणी को, और उसकी भी स्थिति गिर जाएगी, वो लाने वाले की नहीं, जिसको ला रहे उसकी नहीं, ब्राह्मणी की अवस्था गिर जाएगी और दंड मिलेगा उसको। वो जो जिसको ला रही हो बाबा के पास तो आते हैं, प्रतिज्ञा करते और फिर घर जाते और विकार में गिरते हैं, ऐसे को जो ले आती है उसको भी दंड मिलेगा और उसकी स्थिति भी गिर जाएगी। तो यहाँ तो ऐसी आत्माएं यहाँ आ रही है, भट्टी करने जो आत्माएं यहाँ आ रही है वो कोई बहुत अति शक्तिशाली आत्माएं तो है नहीं कि जिनमें बहुत पावर हो, उनकी वहां की दिनचर्या यहाँ आकर ही सब ड्रेस वगैरह चेंज हो जाता है, बैच और व्हाइट और सब यहाँ आ जाता है, वहां जाके चेंज होता है, वहां की दिनचर्या यहाँ की दिनचर्या भिन्न है। तो ऐसी आत्माएं, ये जो सेवा केंद्र की बात चल रही है वो यहाँ की भी बात है कि जो आत्माएं थकी है, जो आत्माएं झंझटों में फंसी हुई है, तो ऐसी आत्माओं को स्व उन्नति सहज योगी बनने का उनको स्थान ये लगे और स्वतः आकर्षित तो यहाँ हो ही रहे परंतु ये सब चीजें भी हो जाए, तो ये वाइब्रेशंस फैलाने हैं। तो उसके लिए हमारी स्थिति भी इतनी पावरफुल चाहिए। और लास्ट है तीसरा, एकता, अनेक होते हुए भी एक नजर है, नहीं तो यहाँ भी उनको लगे कि ये एक ग्रुप, दूसरा ये ग्रुप, दूसरा ये तीसरा ये चौथा, गुड बाजी, ये नहीं, सब एक, अनेक होते हुए भी एक। भिन्नता को बाबा ने क्या हटाओ, भिन्नता ना दिखाई दे, एकता दिखाई दे, क्योंकि एक राज्य एक धर्म की स्थापना यहाँ से होने वाली है, तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई दे। तो अनेक एकता के वाइब्रेशन, इसको भी वाइब्रेशन कहा बाबा ने, इस पर विशेष अटेंशन दो। एक तो रूहानियत मेंटेन हो जहां हम रह रहे हैं उस स्थान की, और एकता, बहुत ज्यादा मतभेद अगर किसी से है, बहुत ज्यादा वो निगेटिव वाइब्रेशंस तो फैलते हैं ना, दो लोग बात नहीं करते, ये आया तो वो उधर देखता है, वो आया तो वो उधर देखता है, बात करने की कोई है ही नहीं, क्योंकि पहले जो हुआ था 10 साल पहले तब से वो चालू हुआ, ना ये झुकने को तैयार है ना वो झुकने को तैयार है, और फिर धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी आ गई कि झुकने का तो सवाल ही नहीं है, और दिखते गया उगुन ज्यादा से ज्यादा, और कंफर्म होते गया कि ऐसा ही है, ये पक्का हो गया, फिर हाँ ठप्पा लग गया, फिर तो बस वो उधर से तो हम इधर से, वो यहां से तो हम वहां से, मतभेद, हम बोल कुछ नहीं रहा है ना, वो कुछ को कुछ बोल रहा है ना वो कुछ को कुछ बोल रहा है, परंतु वायुमंडल में वाइब्रेशन कौन से जा रहे हैं, एकता के जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं एकता के वाइब्रेशंस हो, एकता ही संगठन में, एकता बहुत जरूरी है। जैसे सुभाष चंद्र बोस लिखता है महात्मा गांधी के लिए, हमारे मतों में भेद है पर हमारे मन में भेद नहीं है। बहुत दोनों का विरोध हुआ इंडियन कांग्रेस के बाद में, जो कांग्रेस की मीटिंग हुई दोनों अलग अलग हो गए, तो उसने क्या कहा, भले हमारे मतों में बहुत भेद है, वो तो अहिंसक है, ये हिंसा, वो ये क्रांतिकारी है, वो क्रांतिकारी नहीं है, गरम दर्द नरम दर्द ये सब जो भी थे उनमें मत भेद है पर मन भेद नहीं है। हमारे भी मतों में भेद हो सकता है, वो सोचता है ऐसा होना चाहिए, हम सोचते वैसा होना चाहिए, वो सोचता है वो ज्यादा करना चाहिए, वो हम सोचते हैं, कोई सोचता है कि योग करते रहो, कोई सोचता है ज्ञान का चिंतन करते रहो, कोई कहते हैं कमरे में योग करो, कोई कहते हैं कमरे में चिंतन करो, कोई कहते हैं प्रकृति में योग करो, वो अलग अलग भिन्न भिन्न मत है, परंतु उसके वजह से हम कट्टर उसके दुश्मन ना बन जाए, ये कुछ और सोचता है मैं कुछ और सोचता हूं। मन सबके एक है, मन में भेद ना हो। हाँ बस वही वाली बात है, वो उसमें जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे, ये जो है ना इसको सूक्ष्म रीति से सॉल्व करना है। कैसे, अगर कोई आत्मा है जो हमको लगती है कि हमने उसको कुछ बुरा बोल दिया था, गलती इतनी ज्यादा उसकी थी नहीं परंतु हमने फिर भी बोल दिया, परंतु अभी हमको पश्चाताप हो रहा है, पर पश्चाताप हो रहा है फिर भी हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि बोले तो फिर हमारी ये जो है स्टेटस थोड़ा सा नीचे आ जाता है ना कि भाई हमने माफी मांगी, तो अभी क्या करें, देवेंद्र भाई इसमें क्या करना चाहिए, शुभ भावना, उसको रोज अमृत वेले एक प्रोग्राम बनाओ 3 दिन का कि उस आत्मा से माफी मांगनी है। अगर बोलना है मिल लो तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु अगर वो नहीं करना है वो सबसे बढ़िया है। अगर मिलना भी नहीं बस गले मिल लो तो हो गया खत्म, सारा बात ही खत्म पूरा। कभी कोई पिकनिक पे जा रहा है तो उसको साथ में ले जाओ, पूरा एक साल का पूरा जो ये जो था ना मन में हलचल वो खत्म, नहीं तो वैसे कहां से कौन बात करे। या उसको उसके पास जाओ और उससे कोई सहयोग की अपेक्षा करो, हमको चाहिए नहीं जानबूझ के, उसकी कोई ओपिनियन लो कि भाई क्या करना चाहिए, मतलब अपने आप को थोड़ा छोटा कर दो उस आत्मा के सामने कि तुम बताओ भाई क्या कर सकते, कुछ कर सकते है क्या। और कोई साक्षी भाव से जाओ, उसमें भी ज्यादा कुछ मतलब अपना जो अहंकार को ज्यादा चोट भी नहीं लगे, नहीं तो अहंकार को चोट लगने की सबसे ज्यादा खतरा रहता है कि उसके पास हम जाए कैसे, मतलब हम तो छोटे हो गए ना, फिर दूसरे काम के लिए जाओ, कोई स्थूल काम के लिए जाओ, स्थूल काम भाई हमको ये चाहिए, तुम्हारे पास है क्या, है तो दो, वो थोड़ा सा कृत्रिम लगेगा पर ठीक है, वो भी कर सकते हो, गिफ्ट दे दो वो भी अच्छी बात है, परंतु उससे कुछ ले लेना, उससे मांगना, तलब करना, मदद तलब करना, ये भी एक बात है। तो ये था तीसरा। फिर उसके बाद में बाबा ने क्या कहा कि सेवाएं जो कर रहे हो वो तो बहुत अच्छा है पर सुनना सुनाना बहुत हो गया, ये 3 चीजें अब करो, ये भी प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। फिर सेवा के बारे में, जैसे ब्रह्मा ने हड्डियां दे दी वैसे तुम भी हड्डियां दे दो, सब कुछ सेवा के लिए हो, स्व के प्रति नहीं हो, सेवा के प्रति हो। फिर लास्ट में था कि सीट का नंबर ही अनाउंस करेगी, वो माइक अनाउंस नहीं करेगा, वो सेवा ही अनाउंस करेगी, 108 में आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर प्लान अभी आया है, फिर रिजल्ट देखेंगे, वो सारी बातें उसमें आई है। तो ये था टोटल कितने, वो 10 और ये 3, 13 होमवर्क, 6 और 13 तुझको अर्पण, वो 13 होमवर्क तुझको अर्पण, अब तो देख ले क्या करना है, 13 होमवर्क और ज्ञान की गहराई में जाना और प्रयोगशाला बनाना जीवन को, अभ्यास से प्रयोगशाला। और अभी आते हैं एडवांस पार्टी के लिए, नहीं दादी जानकी का बोल दिया, चलो वो वहीं पे परिक्रमा दादी। अच्छा एडवांस पार्टी के लिए क्या कहा बाबा ने, बाबा आज दीदी से बात नहीं कर रहे, दीदी से आके बैठे हैं बस। बाबा ने जो देखा उसमें ये आत्माएं भी, जो विशेष आत्माएं जो सेवा से यहाँ से गई है, वो भी इमर्ज हो गई, वो भी वहां पर आ गई। और उन्होंने, इन आत्माओं ने क्या देखा नीचे, स्वयं को ही देखा, स्वयं के ही भिन्न भिन्न पार्ट को देखा, अलौकिक राजयुक्त पार्ट, अलग अलग भिन्न भिन्न शरीर में, क्योंकि यहाँ तो आत्मा इमर्ज हो गई ना, वही तो अपने आप को देख रही है, यहाँ से यज्ञ से गई और अभी वहां है, तो वो अपने आप को देख रही है नीचे। तो ये दृश्य उनको बाबा ने दिखाया, तार्किक रीति से ये असंभव है पर सूक्ष्म वतन में सब संभव है, कुछ भी हो सकता है, एनी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बाबा कहते हैं ना आत्माओं को मैं इमर्ज करता हूं वहां पे, वो क्या हो रहा है ना, तो शरीर जाता है, शरीर जा ही नहीं सकता, सूर्य सूक्ष्म शरीर नहीं जा सकता है, आत्मा नहीं जा सकती, आत्मा का शरीर से निकल जाना मृत्यु कहा जाता है, तो कौन जा रहा है, खाली इमर्ज होती है वहां पे, डमी वहां इमर्ज हो जाता है, कौन जाता है, संदेशी इधर रहती है, वो गुरुवार को भोग लगता है, कौन जाता है, कोई जाता थोड़ी है, शरीर वही है, नहीं गया, सूक्ष्म शरीर आत्मा के बगैर नहीं जा सकता, आत्मा है इसके लिए सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर नहीं, आत्मा तो जा ही नहीं सकती है, तो जाता कौन है, यही सब दिखता है बाबा, यही सूक्ष्म वतन इमर्ज करके यही सब कुछ दिखा देता है, और उनको लगता है कि हम वहां गए, पर वहां जाना आना ये क्या है, मतलब दुनिया का भान खत्म हो जाता है, भान जैसे उस दिन कहा ना, सृष्टि जैसे है ही नहीं, चुरपुर जैसे बंद हो गई, ऐसे तुम अंतर्मुखी हो जाओ जैसे कछुओं के मिसाल है, सन्नाटा हो जाए, तो वो जो अवस्था है योग की, वैसे ये साक्षात्कार की भी बात है, वैसे ये दिव्य दृष्टि भी है कि जैसे इस संसार, ये देह का सब कुछ खत्म होके वहां इमर्ज हो जाता है, यहाँ सब कुछ इमर्ज हो जाता है। तो बाबा ने इन आत्माओं को एडवांस पार्टी की आत्माएं, विशेष आत्माएं, मुरब्बी आत्माएं, जो कि बहादुर आत्माएं हैं, ऐसी वैसी आत्माएं नहीं कर सकती वो काम, ऐसी आत्माओं को वहां इमर्ज किया। और उन्होंने क्या देखा नीचे, अपने आप को ही देखा कि हम कौन कौन से भिन्न शरीर में है, राजयुक्त और अलौकिक पार्ट बजा रहे, वंडरफुल पार्ट बजा रहे। और फिर बाबा ने यहाँ से तुरंत चेंज किया और सीधा आगे मम्मा के ऊपर ऐसा घुमाया, इधर बहुत बहुत घुमाया है। मम्मा के लिए क्या कहा? दो स्वरूप, सितारधारी, और दूसरा नदी। नदी गुप्त है, वो जो नदियां है वो थोड़ी प्रत्यक्ष है, प्रख्यात है, गंगा और जमुना, पर सरस्वती नदी गुप्त है। तो गुप्त उसका यहाँ पर भी पार्ट गुप्त था, इसके लिए वहां पर भी पार्ट उसका। हाँ अच्छा, फिर ये तो हो गया। फिर उसके जन्म के लिए बाबा ने कह दिया, जहाँ जन्म वहां जीत। पर गायन क्या है? जहाँ जीत वहां जन्म। फिर बाबा ने कहा वैसा नहीं, यहाँ पहले जन्म होता है फिर विकारों पर जीत प्राप्त होती है, इसके लिए पहले जन्म और फिर जीत, इसको यहाँ पूरा किया। फिर आ गए वो इसके ऊपर, वो जैसे विनाश का बटन दबाने के लिए रेडी है, वैसे एडवांस पार्टी की आत्माएं भी कौन सा बटन दबाने के लिए रेडी है? नहीं वो, हाँ वो उसके पहले और एक बात है, वो इंतजार कर रही है। किसका इंतजार कर रही है? समय का इंतजार कर रही है एक, और दूसरा इंतजार कर रही है यहाँ की साकार सेवा की समाप्ति का। ये दो इंतजार कर रही है, और जैसे वहां विनाश का बटन दबाने के लिए वो तैयार है, वैसे ये तीन चीजों के लिए तैयार है। कौन सी माल? नहीं, दूसरी चीजों के लिए तैयारी तैयारी है। सकाश देने के लिए नहीं, टचिंग, मैसेज और रिविलेशन। टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए और प्रत्यक्षता करने के लिए ये आत्माएं तैयार है। फिर आगे, फिर जन्म के बारे में, कृष्ण पहले आया या राधे पहले आई? कृष्ण पहले आया। क्यों? राधे क्या कर रही थी यहाँ पर? फिर कौन सा काम? अच्छा, कृष्ण को कौन जन्म देगा? कोई हमारे क्लास में उस दिन कह रहा था कि राधे कृष्ण को जन्म देगी, फिर जाएगी और फिर आएगी। क्या ये संभव है? 5 साल पालना कौन करेगा कृष्ण की? फिर मतलब ये बताओ कि कृष्ण के माँ बाप उसकी पालना कितना दिन करेंगे, कितना साल करेंगे, महीना करेंगे? तो कृष्ण की पालना उसके माँ बाप नहीं करेंगे, कृष्ण की पालना उसके माँ बाप नहीं करेंगे, इसका अर्थ ऐसा बोला है बाबा ने कहीं? बाबा ने कहीं बोला है कि कृष्ण के माँ बाप जो है वो तुरंत ही उसको जन्म देते ही अनाथ हो जाएगा कृष्ण? बाप तो अनाथ से सनाथ बनाने आए हैं। अनाथ तो ऑर्फन तो तुम अब हो, कलयुग शुरुआत हो जाएगी कलयुग की वहां, तो फिर ये तो उल्टा हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं, ये बात अच्छी बताई है। जैसे गोकुल में उसका मथुरा में जन्म हुआ, उसको गोकुल में लेके गए, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। पर एक बात तो है, वो जेल में जन्म होता है ना, वैसे जेल में नहीं, गर्भ महल में जन्म होगा उसका। वो भी किसी ने इसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया। तो बाबा ने यहाँ कहा कि राधे और कृष्ण, सबसे पहले कृष्ण आएगा फिर राधे आएगी। तो राधे यहाँ क्या करेगी? ये जो कार्य है इसको संपन्न करेगी। स्थिति श्रेष्ठ जन्म है, फर्स्ट जन्म है, उसकी जो धरनी है तैयार करने का कार्य ये लोगों का है। तो क्या करेगी वो कृष्ण? हाँ वही मम्मा, वो दोनों का नाम लिया है, दोनों मुरब्बी बच्चे। नहीं वो आगे है, यहाँ सबसे पहले कृष्ण आएगा और धरनी मम्मा तैयार करेगी। तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए बाबा ने एक दूसरा उदाहरण दिया। जैसे 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 यहाँ कोई सेवा होती थी तो पहले मम्मा जाती थी, धरनी तैयार करती थी, फिर बाप आते थे। और फिर वहीं पे विश्व किशोर, उनका भी उदाहरण दिया कि ये दोनों जाते थे, सामना ये लोग करते थे, अपोजिशन सहन करते थे, और फिर मतलब ये धरनी तैयार करते थे। तो जैसे ये यहाँ पहले है, वैसे वो अभी गर्भ महल पहले, वो यहाँ पर गर्भ महल तैयार कर रहे। तो अभी प्रश्न ये है कि गर्भ महल कैसे तैयार होगा? ये अष्टरत्नों की बात की, उनको उनका ही तैयार करने की चल रही है बातें, उनके रत्न उनके लिए रुके हैं। नहीं, एक मुरली में बाबा ने कहा है ये जो देवताओं के माँ बाप है उनका गर्भ पवित्र कैसे होगा? तीन चीजों से, अव्यक्त, सकाश, किन किन की सकाश। और आज की मुरली से अगर देखा जाए तो एक सकाश ऐड हो गई। सबसे पहला जैसे दीदी का उदाहरण ले लो, दीदी जब कोमा में थी तो ब्राह्मण आत्माएं उसके लिए योग कर रही है, उनकी एक सकाश उस गर्भ को पवित्र कर रही है, एक। दूसरा, उस आत्मा की अपनी की हुई तपस्या, दूसरा। तीसरा, बाबा की सकाश। आज बाबा ने कहा है कि मम्मा ये लोग गर्भ तैयार कर रहे हैं, ये दो। मतलब एक एडवांस पार्टी की आत्मा दूसरे एडवांस पार्टी की आत्मा, एक दूसरों को परस्पर सकाश, एक तो ब्राह्मणों की सकाश, एक जो अब चली गई है उनकी एक दूसरों को सकाश। ये सकाश से वो गर्भ पवित्र होगा, उस पवित्र गर्भ से देवता का जन्म होगा। पर प्रश्न वो ही रहता है कि क्या देवताओं को जन्म देके ये माँ बाप को, उनको तो जाना है क्योंकि उनको देवता बन के फिर आना है, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन है इनकी पालना कौन करेगा? दासिया प्रकृति, वो देवताओं की पालना करेंगे। नहीं, परंतु पालना, पालना झूले में झुलाना वो सब कुछ, चाइल्डहुड सब कुछ।
तो
कृष्ण जन्म हुआ उसकी पालना कौन करेगा?
तो यहाँ के जो दादियाँ वगैरह जो
वो इस देह में, इस देह में जो रहे हैं वो कृष्ण, कृष्ण उनके उनके हाथों से पलेगा। नहीं बैठता है तब तक,
जैसा कृष्ण जन्म हो रहा है ना उसी प्रकार एडवांस पार्टी भी जाके जन्म जब ले रहे हैं।
नहीं, अभी एडवांस पार्टी वाले गए नहीं, अभी तो खाली 8 माँ बाप को उन्होंने तैयार किया है, मतलब वो जो है फर्स्ट जनरेशन जो है वो मतलब देवताओं को जन्म देने वाले तो कौन चाहिए? अभी जो देवताओं को जन्म देना उनको भी तो तुरंत आना है, उनके पास टाइम कहाँ है? जन्म दे और तुरंत उनको भी तो आना है। हाँ, उनका तो कम हो जाएगा फिर अगर इनकी पालना में लग गए वो तो। उनका टाइम कहाँ है उनके पास?
तो फिर उनको भी तो कोई जन्म देगा
किसको? हाँ, उनको मतलब इसके लिए तो इतनी सारी आत्माएं हैं एडवांस पार्टी की, कितनी सारी है, कितने जा ही रहे एक के बाद एक जा ही रहे। मधुबन में ही अभी एक साल में कितने चले गए, देखते 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 सुदाम भाई चले गए, संजय भाई चले गए, एक के बाद सारे जा ही जा रहे। किसको किसका कभी न चित न मन, ऐसी आत्माएं भी चली गई। तो ये सब का ये देंगे पालना। नहीं, यहाँ बाबा कह रहे कि ये दो आत्माएं, ये दो गर्भ महल तैयार करने में लगे हुए हैं। वो तो पूछ रहे कि बताओ कब डेट क्या है, हम कब कितना देर में तैयार करें, हम तो बिल्कुल रेडी है। इनके इनका अंत होगा तो हमारी आदि हो, हम इनका अंत हमारी आदि, ये भी बात कही है उसमें।
एक बात है, श्री कृष्ण जैसे जन्म लिया है वैसे एडवांस पार्टी भी जाके कुछ जैसे देवता बन के जैसे जन्म लेंगे, कुछ तो आगे तो जन्म लेंगे, तब तो उनका पालना करेंगे।
इच्छा तो थी परंतु वही वाली बात है फिर, तो ये ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म प्रश्न हैं जो दादी के जो संदेश आए थे उसमें भी कुछ कुछ उसमें खुलासा किया है थोड़ा 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 बाबा ने। एक हाँ, एक एक दूसरा एक 2000 में बाबा से मिलने के लिए अव्यक्त बाप दादा को एक मैसेज समाचार दिया गया है कि बाबा आपसे मिलने के लिए एक बस आ रही थी जिसमें बहुत पुरानी बाबा की पालना ली हुई माताएं थी, एक बस या थी जीप या जो भी था, तो बाबा को मैसेज दिया स्टेज पर कि बाबा ये बस की दुर्घटना हो गई, उसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें 6 माताएं थी, 6 बहनें थी, एक भाई था, एक ड्राइवर, हाँ वो आगरा वाला था, कहाँ का था पता नहीं। तो बाबा को ये मैसेज दिया, तो बाबा ने आपका क्या कहना है, बाबा को पूछा गया था इसके बारे में। तो वो जो 8 जो थे, 6 बहनें थी, उसमें एक बहन 18 साल की भी कम उम्र की थी, बाबा ने कहा उसकी भी लगन बहुत अच्छी थी, ये बाकी उस बहन के लिए कहा था, वो कन्या के लिए। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि बाबा इनका क्या पार्ट है अभी, ये क्या एडवांस पार्टी में गई? तो बाबा ने कहा था ये जो माताएं थी ये बड़ी लगन वाली माता थी, बाबा की उन्होंने बहुत पालना ली थी, तो क्या पालना लेती रहेगी, अभी पालना देगी वो। उनको भी तो कार्य कुछ करने हैं,
तो पालना दे रही है जाके,
कहां दे। बाबा ने इतना कह के उसको वो है संदेश, वो जो एडवांस पार्टी की किताब है एक छोटी ना स्पार्क की, उसमें ये 2000 की मुरली है संदेश है, उसमें छोटा सा एक पैराग्राफ है, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो आत्माएं तो शरीर छोड़ के जा रही है, पर ये इतनी सूक्ष्म मशीनरी है कि बाबा ने भी इसको पूरा पूरा, बाबा ने कहा आगे बताएंगे, सब एक साथ नहीं बताया जाता है, वर्ड बाय वर्ड वही बताएंगे, जो अक्षर बाय अक्षर बाबा वही सुनाते जो कल्प पहले सुनाया था, धीरे धीरे बताएंगे, बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, अभी कुछ दिन पहले था ना।
आप बाप, अभी आपको बाप का परिचय देते हैं,
कुछ दिन पहले था,
हाँ
शिव बाबा का परिचय देते हैं आपको
अभी,
तो परिचय पहले नहीं था फिर तक।
हाँ वो तो है। दूसरी तो एक बात है, वो जो 26 जून 1969 की अव्यक्त मुरली, उसमें क्या लिखा हुआ है, अब पढ़ाई पूरी हुई, अब बाप आते हैं मिलने के लिए। 26 जून 1969 अव्यक्त बाप दादा, अब पढ़ाई पूरी हुई, अब बाप आगे से जो आएंगे केवल मिलने के लिए आते, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अभी रिवाइज कोर्स वो जो भी है, पर पढ़ाई तो ब्रह्मा ने अव्यक्त वाणी बिना सुने ही संपूर्ण बन गया। लोग कहते नहीं अव्यक्त वाणी बहुत गहरी है, साकार में इतना नहीं है कुछ मेरा, तो ये लोग तो साकार मुरली सुन सुन कर ही संपूर्ण बन गए। मतलब ये साकार मुरली में इतना मजा नहीं है, अव्यक्त वाणी एक ही टॉपिक होता है उसकी बाबा एकदम गहराई में जाते हैं, और साकार में तो अभी अभी ये अभी वो क्या क्या पता नहीं लहरें चलती रहती है।
एक दिन दादी जानकी ऊपर से क्लास करा के आ रहे थे, हम लोग मुरली पढ़ते हैं,
हाँ।
तो बोला क्या करते हो, तो बोला सुशील ने बोला अव्यक्त मुरली है, अव्यक्त मुरली साकार मुरली पढ़ो ना।
हमको तो साकार में बहुत ज्यादा ये रस आता है, साकार की इतनी सारी पॉइंट्स होती है, इतनी सारी एक एक पॉइंट मतलब ऐसी होती है कि उसकी गहराई में जाकर उसको फिर अव्यक्त, तो उसका एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है, अव्यक्त मुरली इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द साकार मुरली, ये साकार मुरली को समझने के लिए वो सारी चीजें, उसके गहराई में जाने के लिए वो, उसको एक वाक्य को समझने के लिए उसमें जाना पड़ेगा। और क्या कहा यहाँ पर बाबा ने, डेट के लिए कहा, फिर डेट बताओ, डेट तैयार करो, महल कब तैयार, कितना देर में तुमको महल तैयार चाहिए, पूछ रहे कौन सा महल कैसा महल, डेट और वहां की जन्म होगी, जन्म का राज्य का जन्म होगा वही डेट। तो ऐसी रूरियान वतन में चल रही थी, और इसमें बहुत सारी बातें हैं उसको सोच के चिंतन करके, पर वो हम बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता नहीं है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन निकलते जाते, एक प्रश्न दूसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न चौथा प्रश्न।
अजय कुमार पूछ रहा है कि मम्मा जब इतनी लेट आएगी तो वो जो स्वर्ग का जो जो फर्स्ट सुख है ना शुरुआत का, वो तो मिस हो जाएगा
उसमें। मतलब एक दूसरा प्रश्न मम्मा के लिए ये भी है, भक्ति में मम्मा का कितना गायन है, कितने मेले लगते हैं, और यहाँ पर पाठ एकदम गुप्त है, तो कोई ऐसा कहते हैं कि मम्मा फिर आएगी इस ब्राह्मण परिवार में लास्ट में, और यहाँ उसका पार्ट एकदम श्रेष्ठ हो जाएगा। मतलब बहुत सारे तर्क ये है, सब प्रश्न है, शंका है। हाँ वो तो बाबा ने कहा है वो ज्ञान में नहीं होंगे, परंतु उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, बाप के बहुत समीप होंगे ब्रह्मा, ये दादी का संदेश 2007 का, उसमें भी बाबा ने ये एक चीज लिखी है उनके लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं होंगे वो, पर उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, सत्व प्रधान होंगे और सहयोगी होंगे, और उनकी वजह से कई लोग ज्ञान में आ जाएंगे। दादी के लिए बाबा ने ये भी कहा है कि भले वो तन से कहीं और है, परंतु मन उसका अभी भी है, पर उनको ये पता नहीं चलेगा, अगर उनको पता चल गया तो सीधा भाग के मधुबन आ जाएंगे, पर ये ड्रामा में नोंद ही नहीं है, उनका यहाँ आना, उनका ड्रामा में आ जाना, इधर मधुबन में आ जाना, नहीं तो वो तो पूरा छोड़ के इधर आ जाएंगे, हाँ बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं, हमारा तो परिवार इधर है, दादी के रहेंगे ही नहीं उधर। तो वो इतने सारे राज है ऐसे कि बाबा ने एकदम इनको सूक्ष्म रखा है, गुप्त रखे हुए, अंत तक गुप्त ही रहेंगे शायद, पता नहीं कुछ राज तो राज ही रहना, यही इस ड्रामा की परम शोभा है, तेरी गत मत तू ही जाने, नहीं पता चलेगा। हाँ हाँ वो भी है,
ये राज और गंभीरता ही उसकी पावर है अपनी।
चलो एक हफ्ते में 5 मिनट बाकी है, एक हफ्ते में कुछ पावरफुल, बहुत सारा पावरफुल था इस हफ्ते में, तो वो सारा वो हो गया, अंतर्मुख विकर्म विनाश हो गया, उसमें किंग ऑफ फ्लावर, तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर आज की मुरली में जो था ना, खुशबू फैलानी है, वहाँ किंग ऑफ अक के फूल, टांगर के फूल नहीं बनना है, तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनना है, वह टांगर तो शब्द है ही नहीं कहीं, पता नहीं कौन सा फूल है, टांगर नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में, ढूंढने गया तो शहर निकला, बोला छोड़ो हिंदी में तो कहीं आया नहीं, होगा बाबा कह रहे तो होगा। और बोलो, हाँ वेश्याओं को, कितने सारे समाज के वर्ग बाबा ने उस दिन सुनाए थे, वेश्याओं को ज्ञान सुनाओ, एक दूसरा वर्ग सुनाया था जो बीमार है उनको ज्ञान, उनको फिर साहूकार को भी, वेश्या को कहा था अबलाय है, वेश्या को कहा था कि वो बिचारी है, अधमते अधम, अधम का नहीं
इनका ही,
साहूकारों के लिए कहा हुआ है वो, साहूकार जो है वो
उसमें
नहीं, वैसा नहीं है वो साहूकार जो है, अगर इनको देखेंगे साहूकार लोग इनको देखेंगे तो साहूकारों का अलग से स्कूल खोलो, उनका नहीं, साहूकारों का अलग से स्कूल खोल दो, उनको देहाभिमान और लज्जा ये दो बातें होगी, इसके लिए उनका अलग से स्कूल खोल दो। फिर दुकानदार वो ग्राहक को भी याद किया था, कौन नहीं है तो बाप को याद में बैठो, वो एक वर्ग था, कितने सारे अलग अलग वर्ग है उसमें, बाबा वानप्रस्थियों को उसी मुरली में याद किया था कि बाबा को याद करो। तो वेश्याओं का कल्याण करो, ऐलान करो, उनको बताओ, क्या बताओ कि तुम इस ज्ञान को अगर धारण करोगे तो विश्व की महारानी बन सकोगी, तो वो खुश हो जाएंगे। अधमते अधम नीच अति नारी, अधम शब्द का अर्थ है बहुत सारे अर्थ है, अधम के तीन अर्थ है, एक पहला अर्थ है दुराचारी दुष्ट पापी आत्मा, दूसरा अर्थ है लोअर क्वालिटी निकृष्ट जाति, लोएस्ट जो है ना, जैसे वो शबरी कहती है ना, अधमते अधम नीच अति नारी, राम को कहती है मेरे जैसे नारी अधम उसके तुम घर में आए। और तीसरा अर्थ है अधम, एक योग भी होता है अलग प्रकार का, एक योग जो होते हैं ना वो नक्षत्र वगैरह उसमें एक अधम योग होता है, तो मेन तो ये दो चीज है। तो वेश्याओं की सेवा करो, करता है कोई, कोई भी सेंटर की बहने जाती है क्या? ये तो मुरली पढ़ ली सुन ली बहुत अच्छा, पर जाता है कोई?
हम सब तो नहीं।
हाँ
एक बार।
ये किसको चल रही है फिर मुरली, किसके लिए चल रही है? नहीं ये किसके लिए मुरली चलिए, गृहस्थियों के लिए, बवाई बाबा ने बोला है कि गृहस्थी लोग जाए और कुमार कुमारी न जाए, तो ये बाबा से पूछ के ही तो बताया बाबा ने, साकार मुरली अर्थात बाबा के उत्तर। हाँ ऐसे सर्विसेबल बच्चे जो है उनको बाप दादा, जो लाडले सर्विसेबल बच्चे है उनको बाप दादा नैनो पर बिठा कर लेके जाएंगे।
मृत्युंजय भाई से बोला था कि ये किन्नर और ये जो बच्चों के बाबा बात करते हैं ना, तो इनकी भी सेवा करें तो
कठिन है, क्योंकि उनके संस्कार जो है ना वो देहभान के संस्कार है, वो बहुत पक्के संस्कार है, वो जो कर्म कर रहे हैं वो देहभान के जो है ना वो संस्कार बहुत पक्के है। और कुछ कुछ वेश्या आई भी है ज्ञान में पर टिक नहीं सकी, ऐसा भी हुआ है। वो पॉइंट कहीं और था, काकविष्टा के समान सुख है, गंधर्व विवाह खुश नहीं होने की बात नहीं है इसमें, कोई कमजोरी है वो तो। और कोई कोई विवाह तो बाबा खुद लगाते, वो जो है वो भक्ति के जो है वो टिप टॉप रहते हैं और पढ़े लिखे रहते हैं, वो जाते हैं तो वहाँ सगाई भी कराते हैं, और कुछ कुछ सगाई बाबा कराते हैं, फिर वो काम चिता पर बैठने से बचने के लिए, वो वहाँ है शायद वो जो सुख, हाँ बचाने के लिए, पर वो बाबा कराए वो दूसरी बात है, खुद करे वो उसमें गड़बड़ है। प्योर मैरिजेस, इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने देखा उसका, गंधर्व विवाह का प्योर मैरिजेस, लव मैरिज नहीं, प्योर मैरिज पवित्र प्रेम, पवित्र विवाह, प्योर मैरिजेस, प्योर मैरिज, वो ही तो अभी प्रश्न है। चलो और भी कुछ था पॉइंट एक हफ्ते में बाप दादा, तो हम स्वयं को जैसे बैरिस्टर बैरिस्टरी का तिलक स्वयं को देता है, वैसे तुम स्वयं स्वयं को राज तिलक दे दो।
वो प्रैक्टिस वाला था ना, वो श्रृंगार करते हैं आत्माओं का, और वो
श्रृंगार नहीं फर्निश, मकान को फर्निश करते हैं, वह बाप तो अशरीर ही है वो क्या फर्निश करेगा। वैसे दूसरा एक कल परसों की मुरली में रहता शिव बाबा, ये ब्रह्मा क्या समझता है कि शिव बाबा इस, ये शिव बाबा का रथ है वो उसको खिलाता है, तुम भी ऐसा समझो, तुम भी ऐसा समझो, ये शिव बाबा का रथ है वो उसे खिलाता है, तुम भी ऐसा समझो।
ये कौन कह रहा
है? शिव बाबा कह रहा है, तुमको कह रहा है ये रथ, महिमा करो और बाप को याद करो तो भोजन पवित्र हो जाएगा, दुखभंजन भोजन है ये, 22 अक्टूबर 86 हाँ ब्रह्मा भोजन। और
जो कार्य बाप की याद में नहीं करते तो
पाप, वो पाप, अरे बाप रे पाप, कितना बड़ा महावाक्य है ये,
पाप लग जाता है बोला,
पाप ही पाप। जो कर रहे हो बाप की याद में नहीं है तो वो पाप है,
पाप लग जाएगा, पाप लग जाता है
तो। और ज्ञान में चलने के बाद एक का 100 गुण है, वो सूक्ष्म मशीनरी दूसरी, हाँ तो अच्छा पदम गुना तो है एक जगह, ये 300 गुना पहली बार सुना है। एक मुरली में तो एक संकल्प का भी, एक अपवित्र संकल्प का भी तुम्हें दंड मिलेगा, यहाँ तक बोला है एक अव्यक्तवाणी में। धर्मराज की एक मुरली है, उसमें बहुत कड़े शब्द है। और राजकुमार भाई और क्या बोला? अनिल भाई, सर्व आकर्षण के जो संस्कार है वो समाप्त हो जाएंगे। अच्छा चलो स्लोगन पे आ जाओ सारे। योग बल से क्या हो जाएगा? दो चीजें समाप्त होगी, परिवर्तन होगी, दुख सुख में हो जाएगा और अशांति शांति में परिवर्तन हो जाएगा। एक दूसरा स्लोगन इन्होंने बता दिया, तीसरा स्लोगन करेक्शन वाला, अपोजिशन माया का करना है, दैवी परिवार का नहीं, वो हो गया। कल का अभी बहुत हो गया। वरदान बोलो सबसे, मंडे का वरदान, फरिश्ता सकाश ऊपर देकर, ऊपर की सीट में रहकर सकाश दी जाती थी, नीचे आकर सकाश नहीं दी सकती। सकाश कैसे देनी है? दृष्टि वृत्ति से सकाश देनी है, सहयोग की सकाश, कल्याण की सकाश देनी है, नीचे आकर सकाश नहीं दे सकते। हाँ परंतु कोई नहीं, वो दूसरा है, मिक्स होके नहीं, वो दूसरा है, वो ऑनेस्ट कौन है? दो दिन का वरदान इस पर था। ऑनेस्ट वो है जो हर खजाने को बाप की श्री डायरेक्शन अनुसार कार्य में लगाते, जो विश्व कल्याण के कार्य में इसको नहीं लगाते वो भी ऑनेस्ट नहीं है, वो भी ऑनेस्ट है। जो अपनी मनमत परमत से मिक्स करते हैं बड़ों को और निमित्त बनी हुई आत्माओं के सामने मनमत परमत चतुराई से, वो भी ऑनेस्ट नहीं है। फिर दूसरा एक था जो स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हैं, अभी स्वमान के बजाय देहभान में रहते हैं, और जो मनसा वाचा कर्मना श्वास संकल्प से जो श्रीमत के बजाय मनमत या परमत या कुसंग शायद है, कुसंग नहीं दूसरा शब्द है, वो उसमें व्यर्थ गवाते हैं, तो वो सब ऑनेस्टी नहीं है। तो ऑनेस्टी कितनी सूक्ष्म परिभाषा है, दो तीन।
और
जो है जैसा है उसको वैसा ही स्वयं को प्रत्यक्ष करना, जैसे बाप जो है जैसा है वैसे आपके सामने प्रत्यक्ष करता है, वैसे ये है ऑनेस्टी। सर्वेंट, तो सर्वेंट कौन है? जो अलमस्त नहीं है, जो हर समय सर्विस में उपस्थित है। अलमस्त अर्थात मौजी, बहानेबाजी नहीं, बेपरवाह, लापरवाह, गफलत में रहने वाला, गाफिल रहने वाला, वो सब है अलमस्त। अलबेला, मौजी, ऐसे ही अपना अपने इसमें रहता है। दूसरा बोलो,
एक वरदान बहुत अच्छा, वो पावरफुल ब्रेक और
वो, हाँ वो कल का था। दो चीजें होनी चाहिए, ब्रेक पावरफुल होना चाहिए, पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए। तो यथार्थ पुरुषार्थ की ये परिभाषा है, क्योंकि जो परिस्थिति आने वाली है उसमें बहुत सारे संकल्प होंगे, तो अभी से प्रैक्टिस करो, जो बिखरी हुई बुद्धि है उसको एक संकल्प में स्थित करने का अभी से प्रैक्टिस करो, तो फिर वो होगा कि जब बहुत सारे संकल्पों को एक परिस्थिति ऐसी होगी पार हो जाना, ये है पुरुषार्थ। तो ब्रेक को पावरफुल करो और पुरुषार्थ को तीव्र करो,
तब
पास विद ऑनर होंगे। अशुद्धि क्या है? आज का वरदान, आज का स्लोगन, अशुद्धि विकारों को आह्वान करती है, भूतों को, विकार की जो भूत है उसको अशुद्धि आह्वान करती है। इसके लिए संकल्प में भी शुद्ध संकल्प हो। सुना नहीं, उन्होंने बोल दिया था।
सच्चा योगी हो गया।
सच्चा योगी कौन है? सच्चा योगी नहीं, सच्चा तपस्वी वो है जो
जो वैराग्य की
श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहता है।
वैराग्य की नहीं,
सच्चा तपस्वी वो है जो श्रेष्ठ त्यागी की पोजीशन में स्थित रहता है, ऐसा है वो।
तुक्का लगा
चने वाली बात
चने।
वो एक्चुअली अर्जुन का नहीं लग रहा है मुझे, सुदामा का ज्यादा लग रहा है, हो सकता है, क्योंकि बाबा ने कहा ना, कोई कच्ची बहन है तो उसको कोई भाई ले जाता है, कहते चने खाऊंगी, एक बार खाएंगे तो पाप थोड़ी लगेगा, तो वो कच्ची रहती है तो खा लेती है। तो इसका शास्त्र में दृष्टांत अर्जुन का दिया हुआ है, पर ऐसी ऐसी कथाएं लिखे वैसे होता थोड़ी है, ये साकार मुरली है, परंतु उसका अर्थ उसका ऐसा है कि वो जो सांदी पानी के आश्रम में जब दोनों रहते हैं और समिधा भेजने के लिए यज्ञ माता उनको भेजती है, सुदामा और कृष्ण को, दोनों के पास सुदामा के पास चने रहते हैं, बारिश आती है, तूफान आता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग एक ही दो झाड़ पर अलग अलग हो जाते, तो वो सुदामा को लगता है इसको क्यों दूं, मेरा दोनों भूखे रहते हैं, तो वो खुद ही खा लेता है, चुपके से खा लेता है, तो वो उसको पूछता है क्या खा रहे हो, बोलते कुछ नहीं बस ठंडी की वजह से दांत रो रहे तो वो छुपाता है, उससे खा लेता है, ये विकर्म हो गया उससे, अकेले खाया, इसके लिए वो दरिद्र बन जाता है बाद में। तो ये कहानी में एक तो महाभारत की कहानी है, सुदामा का नाम है, चने का नाम है और छुपा के खाना है, तो ये चार ही चीजें वहां पे फिट होती है। तो हो सकता है, मतलब अनुमान है कि वो अर्जुन की जगह, परंतु बाबा जो कहता है वो तो कहीं और होगा। हाँ, वो सत्यवचन महाराज, इसके लिए तुम दिन को रात को रात कहोगे तो नहीं, तुम रात दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, वो गीते नहीं, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। तो वो बाबा ने कहा है तो होगा भी, पर ऐसा एक अनुमान। तो अभी इसको यहीं पूरा करते। तो ये थी आज की मुरली, इसमें इतने सारे होमवर्क, इतने सारे वरदान, इतने सारे दृश्य, ये सब बाबा ने दिखाया। बार बार पढ़ेंगे तो याद रहता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद थोड़ा बहुत। हाँ, इतना सारा अभी हम 3 दिन से पढ़ रहे तो इतना समझ में आया, 5% समझ में, धारणा दूसरी बात है, वो आगे देखेंगे, समझ में इतना आया, 5% 5% मैं ऐसे ही कहता हूँ। कोई पेशेंट को हम लोग एडमिट करते, एक पेशेंट को एडमिट किया था बहुत पहले, उसको बहुत सारी तकलीफ थी, 10 दिन रखा, हर दिन पूछते थे अभी कैसा है, कहते बहुत बढ़िया, ऐसा है वैसा है। 10 दिन जब छुट्टी का दिन था, अभी कैसा है, कितना फर्क है, बोला 1%। तो उसके बाद में मैंने सोचा कोई भी पेशेंट को 5% से ज्यादा पूछना नहीं, कैसे अभी ठीक, 5% है ना ठीक। हाँ, फिर वो अगर सामने से कहे कि भाई मुझे 50% पसंद, वो बोले, पर हम अपनी तरफ से बोलते 5%। तो वैसे ही जो कुछ किया, पढ़ा, स्मृति में रखा, डिस्कस किया, चिंतन किया, मनन किया, समझ में आया। ओम शांति।